ओम शांति। बाबा के नूरे रतन राज दुलारे आदरणीय भ्राता जी हमारे सन्मुख हैं। इस अंधेरी नगरी में एक दीपक लेके आप ढूंढने निकलेंगे तो सब तरफ वैर विरोध वाले लोग ही मिलेंगे, लेकिन ढूंढते ढूंढते आप राजस्थान के अरावली घाटियों के तलहटी के शांतिवन के डायमंड हाल में पहुंचेंगे तो केवल एकमात्र व्यक्ति आपको दिखाई देंगे, वो है हमारे आदरणीय भ्राता निर्वैर जी। आप सब की ओर से भाई साहब का हम आदर पूर्वक स्वागत करते हैं। हमारे निर्वैर भाई जी एक ऐसे मृदु हृदय कोमल दिल स्वीट एंड सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति हैं जिनसे हम सब प्रेरणा पाते हैं। भारत की नौसेना नेवी में इंजीनियर रह चुके आप गत 5 दशकों से भी अधिक समय से यज्ञ सेवा में समर्पित हैं। आज आप इस विशाल यज्ञ की चहुमुखी वृद्धि के मूल पुरुष हैं। ये अपने चेहरे और चलन से बाप दादा को प्रत्यक्ष करने में सक्षम हैं। आप गत 4 दशकों से मधुबन में रहकर सारे विश्व को मधुबन में आकर्षण करने की सेवा के प्रणेता हैं। इन विशाल हृदय महान आत्मा की एक ही लगन है कि चाहे शिक्षा के माध्यम से या वैदिकीय क्षेत्र के द्वारा बाबा की प्रतिष्ठा हो। ऐसे सदा कुमारपन की खुमारी में ईश्वरी खुमारी में रहने वाले भाई साहब इस विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन हैं। साकार मम्मा बाबा की प्यार की पालना में पले हुए भ्राता जी के स्मृति के भंडार में अनमोल अनुभव के खान हैं। प्रेरणादायी साकार यादों के द्वारा भाई साहब हमें भी संपन्न बनाएंगे। आप सब की ओर से भाई साहब का पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
ओम शांति। बाप दादा के सभी सिकील दे लाडले नूरे रतन, सिर्फ मैं नहीं नूरे रतन, आप सभी नूरे रतन, सबका वेलकम है। बाबा का जो पहला साकार बाबा का पत्र आया था तो पत्र के शुरू में ही बाबा के महावाक्य जो लिखे हुए थे उसमें यही शब्द थे, नूरे रतन। बाबा हम बच्चों को हमेशा इस जग को रोशन करने वाले बाबा अपने नैनों के सितारे समझते थे कि इन बच्चों के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा। इतनी ऊंची दृष्टि से बाबा पहले दिन से हम बच्चों को देखते हैं। अवश्य ही आप सब में भी इतने बड़े संगठन में आज कई भाई बहनें पहली बार आए होंगे। हाँ, जो पहली बार आए हैं जरा हाथ खड़ा करें, काफी हैं। जो कर्नाटक से पहली बार आए जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, अन्य स्थानों से थैंक यू। जनवरी मास हम सभी ने अव्यक्त मास के रूप में विशेष रीति से ध्यान में रखते हुए कि जनवरी मास खास याद दिलाता है मनुष्यात्मा अपने दिव्य पुरुषार्थ के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव के साथ अपने सर्व संबंध जोड़ने के फलस्वरूप बाप समान बन जाते हैं, जिसका उदाहरण साकार ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने से हम सब को अनुभव होता है। और अव्यक्त होने के बाद जैसा बाबा का पहला संदेश आदरणीय दादी गुलजार जी के द्वारा हम सबको 21 जनवरी 1969 को प्राप्त हुआ था, जब हम साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद, उनके अंतिम संस्कार होने के बाद 21 जनवरी शाम के टाइम बाबा को भोग स्वीकार करा रहे थे। परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी और दीदी मनमोहिनी जी तथा अन्य वरिष्ठ दादियां, उन सब की तरफ से दादी गुलजार जी को निमित्त संदेशी के रूप में बिठाया था। यूं तो भोग लगाने के लिए दादी बैठी थी, दादी ट्रांस में गईं, हम सब सामने बैठे देख रहे थे। मधुबन के छोटे हिस्ट्री हॉल जिसको कहते हैं, छोटे हॉल में इसकी बजाय कि दादी आकर संदेश सुनाए, अव्यक्त बाप दादा की पहली पहली पदरामणि उस दिन हुई थी। दादी जी के नैन खुले, और अव्यक्त बाप दादा ने हम सबको, दादी जी को, दीदी जी को, जगदीश भाई को, रमेश भाई को, ब्रिजमोहन भाई, सभी जो भी साथ उस समय बैठे थे सामने, दादा आनंद किशोर, दादा विश्व रतन, दादा चंद्रहास, करुणा भाई, हम सब बैठे थे। बाप दादा ने पहले एक एक को अव्यक्त दृष्टि देते देते ऐसा हम सबको महसूस कराया बाबा के वाइब्रेशन से, बाबा के नैनों से, हरेक स्वतः समझ गया बाबा हम सबसे मिलने के लिए आए। उस दिन सबसे पहली अव्यक्त मुरली हम सब ने सुनी। उस मुरली से पहले आप सोच सकते हैं यज्ञ के इतिहास में एक बहुत अहम दिन था, जबकि डायरेक्ट साकार बाप दादा हम सबको व्यक्तिगत रूप से एक एक बच्चे को स्वयं मुलाकात के समय शब्दों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा या पत्रों के द्वारा गाइड करते रहते थे, सेवा के डायरेक्शन देते रहते थे, हमारी निजी धारणाओं को मजबूत करने के लिए ध्यान खिंचवाते रहते थे। तो हम सबके मन में एक क्वेश्चन उठता था कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद अब क्या होगा। क्योंकि बाबा का वायदा है कि सतयुगी दुनिया की स्थापना करने के बाद ही बाप दादा जाएंगे, और ये अचानक पार्ट जो चेंज हुआ इससे हर एक के मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हुए थे। और एक प्रकार से वो दिन यज्ञ इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, जब बाबा ने स्वयं महावाक्य उच्चारण करते हुए यज्ञ कैसे आगे चलता रहेगा, बाप दादा कैसे बच्चों से मिलते रहेंगे। यज्ञ के जो नियम हैं, जो मर्यादाएं हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लक्ष्य सत्यु की स्थापना का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए, उस लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बड़े सरलता से बाबा ने कहा, पहले बाबा को अपने लिए समय देना पड़ता था, अब सारा ही समय बच्चों के लिए होगा। और उस समय बाबा ने उन बच्चों का आवाहन भी किया जो तब तक संपर्क में भी नहीं आए थे, भारत में भी और विदेश में भी। ये एक बहुत ही अहम बात थी, लेकिन विशेष बात जो रही, जो मैंने अपने ईश्वरी जीवन में 10 वर्ष जो साकार बाप दादा के साथ बिताए थे, बहुत छोटी उम्र में बाबा के पास आने का सौभाग्य मिला था। 20 साल की उम्र क्या होती है, आज कहो या कल की डेट, सेवा केंद्र पर जब जाना शुरू किया था उसमें पूरे 50 और 4 साल हुए हैं, 54 ईयर्स पूरे हुए हैं। लेकिन ईश्वरी ज्ञान की विशेषता ये रही, मैं सब बातों को मुड़ के देखता हूं, विशेषता ये रही कि बाबा ने हम बच्चों को, पहली बात तो लक्ष्य ही इतना ऊंचा दे दिया, जिसके ऊपर और कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। भाई हैं तो बाबा ने कहा, बच्चे आपको नर से श्री नारायण बनना है, बहन हैं तो उनको यही कहा, आपको श्री लक्ष्मी बनना है, विश्व महाराजन विश्व महारानी बनना है और विश्व पूजनीय बनना है, किसी के आगे सिर नहीं झुकाना पड़े, किसके सामने नैन नीचे न करने पड़े। मैं समझता हूं सभी अनुभवी हैं, ऐसा ऊंचा लक्ष्य मिलता है हरेक उमंग में आता है, खुशी से उसके लिए तैयार हो जाता है। और उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे इसके लिए कोई फी नहीं है, क्यों, बाप कभी बच्चों से कोई फी नहीं लेता है, ये बाप बाप भी है, परम शिक्षक भी है, परम सतगुरु भी है, इतना योग्य बना करके बच्चों को साथ लेके वाया परम धाम सत्युग में प्रवेश करेंगे। आप सोच सकते हैं, मुझे तो थोड़े थोड़े वो ऐसी बातें सामने आती हैं, एक बंधेली माता को मैं कई बार ये क्लास में सुना चुका हूं, एक बंधेली माता, बॉम्बे की बात है, सवेरे 6:30 बजे उनका फोन आता था, बाबा ऐसी कुर्सी पर बैठ करके उनका फोन लेता था और फोन पर सारी मुरली सुनाता था, पर मुरली सिर्फ उस आत्मा के प्रति नहीं, हम लोग 6 लोग सामने बैठते थे, 2 भाई 4 बहनें होती थी, बड़ी दादियां, पुष्प शांता दादी, शीलिंद्रा दादी, रतनमणि दादी, देवी माता, क्वीन मदर, रामी बहन, ये थोड़े से लोग और आनंद किशोर दादा और मैं। पर बाबा की मुरली ऐसे चलती थी जैसे सारे विश्व की आत्माएं बाबा के सामने। आज ये सुनते हुए आपके दिल में क्या आ रहा है कि आपका आवाहन बाबा ने 1959 में किया, मैं तो यही कहूंगा 1959 में, जबकि मैं बात सुना रहा हूं उस समय आपका बाबा ने आवाहन किया। ऐसी विशाल दृष्टि, ऐसा विशाल हृदय, ऐसा विशाल ज्ञान, ऐसा श्रेष्ठ योग संसार के अंदर कोई सुनाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं। सबसे पहली बाबा की तरफ से संदेश देने के लिए टीम जो विदेश गई, रमेश भाई थे, रोजी बहन थी, शील दादी थी, डॉक्टर निर्मला थी, दादी जी थे, जब विदेश गए जगदीश भाई जी थे, तो उनको न्यूयॉर्क में, रमेश भाई के फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि आप यहां सेवा करेंगे तो आपको उसके लिए कोई फी जरूर रखनी चाहिए, मुफ्त में अगर कोई चीज आप देंगे तो यहां अमेरिका में लोगों को उसकी वैल्यू नहीं होगी। ब्राह्मण परिवार का एक विशेष रस्म कहो, श्रीमत कहो, कि कुछ भी हो, यज्ञ के लिए कोई भी बात है, कोई भी पॉलिसी है, तो बाबा से पूछे बिना कोई बात नहीं करेंगे, खास बाबा से पूछो। गुलजार दादी जी यहां थे, मधुबन में उस समय रहते थे, बाबा ने उत्तर दिया, ये ईश्वरी ज्ञान देने वाला कौन है? बाप कभी बच्चों से फी नहीं लेते, फी लेने का प्रश्न ही नहीं है, आप दाता के बच्चे, दाता के बच्चे ईश्वरी ज्ञान देने के लिए वहां पर गए हो, फी लेने के लिए नहीं गए। और आज दिन तक यज्ञ का ये असूल इसी पर कायम है। जब भी कोई 7 दिन का कोर्स करने आता है, बहनों आप फी लेते हो उनसे? कभी कहते हो फी है इसकी? कभी नहीं। और कभी कभी अगर फी की बात भी करते हैं तो हंसी में क्या कहते हैं, आजकल तो वो बात भी नहीं रही, कहते थे 5 खोटे पैसे देने होंगे आपको। जिज्ञासु बेचारा समझ नहीं पाता था, 5 खोटे पैसे किसको कहते हैं? 5 विकारों का दान, वो थी फी। आज सब भाई बहने जितने बैठे हैं, कौन सी फी दी है सभी ने? 5 विकारों का दान। जो चीज हमें नुकसान करती है, जिस चीज से हमें दुख मिलता है, अशांति मिलती है, वो बहने निमित्त बन के बाबा की तरफ से सबसे दान में ले लेती है, फी के रूप में भी नहीं लेती है, दान के रूप में। तो इस तरह से बाबा की यज्ञ की स्थापना का कार्य, वो भी यूनिक, अद्भुत, जिस तरह से शुरू हुआ। कोई सन्यास लेता है, अकेला घर से चला जाता है, सन्यासी बन जाता है, ओम मंडली शुरू हुई तो क्या हुआ? परिवारों के परिवार आकर के उसमें सम्मिलित हुए। आज बाप दादा का रथ, दादी गुलजार जी अपने माता जी के साथ आई, कितने वर्ष की थी? 9 वर्ष की। रतनमयनी दादी 12 वर्ष की। पूरी कहानी अद्भुत कहानी है, विश्व परिवर्तन की कहानी है, मनुष्य आत्माओं को देवता बनाने की कहानी है, कॉमन चीज नहीं है। और इस कहानी में आप हम सब भाई बहनों का बाबा ने कैसा पार्ट लिखा है, सोचा है कभी आपने? एक एक का हीरो पार्ट, एक एक, छोटे बच्चे का भी हीरो का पार्ट है तो बड़ों का भी हीरो का पार्ट है, क्योंकि आपका पार्ट दूसरा कोई बजा ही नहीं सकता। तो ऐसे पहली, क्योंकि मुझे बहन जी ने जो कहा कि बाबा की प्रेरणादायक कोई बातें सुनाओ, तो मैं सोचता हूं इससे बढ़कर के और कौन सी प्रेरणा की बातें सुनाऊं। बाबा के एक एक बात को, हिस्ट्री को, बाबा की अपनी पर्सनल हिस्ट्री को जब हम देखते हैं वो प्रेरणादायक है। कैसे बाबा ने अपनी जीवन की शुरुआत एक छोटे से बिजनेस से शुरू की, और बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं तक उनका संबंध जुटा, लेकिन सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में, वो सब ऐसा त्याग किया। जैसे आप हिस्ट्री सुनते हैं, जब बाबा को शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ 1936 में शिवरात्रि के टाइम, बॉम्बे की बात है वो भी, ऐसी अद्भुत बात बाबा ने की, कभी आपने स्वप्न में भी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। अपने बिजनेस पार्टनर को टेलीग्राम क्या करते हैं, बाबा अपने आप को बिजनेस पार्टनर में ए और जो उनके साथी थे उनको बी, यानी उर्दू में कहते अल्फ और बे, तो उर्दू में बाबा ने उनको टेलीग्राम क्या की, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को बादशाह, और साथ में एक मैसेज लिख दिया, मेरा जो भी हिस्सा बनता हो मुझे हैदराबाद सिंध में भेज देना। आप सोचिए क्या ऐसी ऊंची धारणाएं, क्या ऐसी ऊंची मान्यताएं, क्या ऐसे ऊंचे असूल कि अपने बिजनेस पार्टनर में इतना विश्वास। ये नहीं कि कोई वकील को बीच में बिठाओ जो अलग अलग हिस्से करे, नहीं, और वो जो बाबा का हिस्सा उनके बिजनेस पार्टनर ने बाबा को भेजा, कभी कभी बाबा प्यार से अकेले मिलते थे तो वो सारी बातें कभी कभी सुनाते थे, वो सीड मनी बन गया यज्ञ की स्थापना करने का। अब आप सोचिए वहां कितनी अद्भुत बात है। नहीं तो सब कुछ बच्चों को दे करके चले जाते, संन्यास करते, वो नहीं किया। अपने लौकिक घर में शिव बाबा की सच्ची गीता पाठशाला शुरू की। युगल को भी, बच्चों को भी, सभी को तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, क्योंकि एक नई स्थापना का कार्य शुरू, ईश्वरी प्लान के अनुसार जो कार्य शुरू हुआ, उस स्थापना के कार्य में जो कहा जाता है अपना तन मन धन परिवार सब कुछ उसके अंदर समर्पित, बड़े गौरव की बात है। उसकी निशानी आज हमारे पास निर्मल शांता दादी 97 साल की हैं आज, बाबा का छोटा बेटा नारायण दादा बॉम्बे में, किसी ने आज दिन तक इस दुनिया में ऐसा मिसाल कभी कायम नहीं किया कि परिवार को भी समर्पित करो साथ में, धन भी पूरा उसमें समर्पित करो। 18 जनवरी 1937 बाबा का लिखित हस्ताक्षरों का, लाल पेंसिल से पत्र लिखा हुआ, ओम मंडली माता के चरणों में मैं लखी राज, बाबा अपने आप को लखी राज लिखता था। अपना तन मन धन पूर्ण समर्पित करता। और आठ माताओं बहनों का ट्रस्ट बना दिया। क्यों? बाबा की हर बात अद्भुत। बाबा के महावाक्य बच्चियां ट्रस्टवर्दी होती, धोखा नहीं देती। ऐसा विश्वास बाबा को था। उस समय जिन्होंने बाबा को पहचाना, अपना जीवन समर्पित किया, मातेश्वरी सरस्वती, दादी प्रकाशमणि, दादी पुष्प शांता, इस तरह से आठ, उसमें पांच कुमारियां तीन माताएं थी। उनके हाथ में सब कुछ अर्पित कर दिया और बाबा स्वयं इतना डिटैच हो गया, उसके बाद कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया। दुनिया से न्यारे, लेकिन सारी विश्व के प्यारे बन गए। ऐसी जीवन बाबा ने अपनी पहले तो स्वयं की बनाई। जिन्होंने विश्वास रखा शिव बाबा के कार्य में, बाबा ने ये नहीं पूछा आप कितनी पढ़ी हुई हो या कितने पढ़े हुए हो, नहीं। लेकिन जो आए उनको ईश्वरी पढ़ाई पढ़ाने का शुरू किया। मनुष्य को देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाना ये दुनिया में कोई करता ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास वो ज्ञान ही नहीं है। ऐसा एक अद्भुत ईश्वरी विश्वविद्यालय स्थापन किया, और ना सिर्फ स्थापन किया, उसमें जो समर्पित हुए 380 भाई बहनें, उनको 14 वर्ष तक तपस्वी बनाया, ज्ञानी तु आत्मा बनाया, दिव्य गुणधारी आत्माएं बनाया, और साथ में दादियों को देख के क्या समझते हो? दादी जानकी को देखते हो तो क्या नजर आता है? 97 की एज में तबीयत भी ऊपर नीचे कभी होती है, फिर भी श्वासों श्वास एक ही बात, ये बाबा के बच्चे आए हैं, मैं इनकी सेवा करूं। ऐसे विश्व सेवाधारी तैयार करना ये किसी मनुष्य आत्मा का काम नहीं। ब्रह्मा बाबा भी मनुष्य आत्मा न रह करके फरिश्ता बन गया इस सेवा के। तो ये सब बातों को जब ध्यान देते हैं तो बड़ा ही एक अंदर दिल को सुकून मिलता है, खुशी होती है, नशा चढ़ता है, गौरव होता है कि हम किस ईश्वरी परिवार को बिलोंग करते हैं। बाबा का एक एक बच्चा मैं तो ये देखता हूं, चाहे कोई पहले आए, चाहे कोई बाद में आए, चाहे कोई पहली बार आ जाए, एक एक बच्चा पहली बात है बहुत बहुत महान भाग्यशाली बच्चा है। ये महान भाग्यशाली बच्चों का परिवार है, ये भावना आती है मन में। जिसने बाबा को पहचाना उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। कुंभ के मेले में जाकर के इतने लोग स्नान करते हैं, सब करते हैं, किस बात के लिए करते हैं? वो किस चीज की निशानी है? कैसा करने से मुक्ति पाएंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे? संतों की सेवा करते हैं, सब करते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, भावनाएं भी ऊंची होती हैं, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन बाबा ने जिस तरह से हम बच्चों को आप समान पावन बनने की प्रेरणा दी, वो कोई नहीं देता। ये भी नहीं कहा घर बार छोड़ो, ये भी नहीं कहा आप सन्यासी बन जाओ, नहीं। जो जहां पर है जैसे है, अपने लौकिक कारोबार, लौकिक परिवार, उस सब को संभालते हुए, लेकिन अपनी मनोवृत्ति को चेंज करो। मनोवृत्ति को चेंज करने के लिए उसका यथार्थ ज्ञान चाहिए। भक्ति तो बहुत की, बाबा के शब्दों में कभी हंसी हंसी में बाबा कहते थे, भक्ति करते सिर झुकाते, माथा टेकते टेकते क्या हो गया? बाल ही उड़ गए सारे। नहीं, कल किसी से बात चल रही थी, अनुभव सुना रहा था मैं, बाबा के सामने आते थे, नए भी आएंगे, बाबा के पांव पड़ना चाहते थे, बाबा बहुत प्यार से उनको समझाते थे, बच्चे ये बाबा तो तुम्हारे जैसा है, इसके भी तो बाल बच्चे थे, आपके भी बाल बच्चे हैं, ये भी बिजनेस में था, आप भी बिजनेस में हो या नौकरी में हो, ये भी भगत था, आप भी भगत हो, तो इनके पांव किस बात के लिए पड़ेंगे आप? तो कोई कहेगा शिव बाबा आप में आते हैं, तो बाबा कहते थे पर शिव बाबा के तो पांव है ही नहीं, उनके पांव कैसे पड़ेंगे? तो फिर बाबा बहुत प्यार से इशारा देते थे कि बाबा दृष्टि के द्वारा, नैनों के द्वारा आत्मा से मिलते हैं, आत्मा रूपी बच्चों से शिव बाबा इनके नैनों द्वारा दृष्टि देते हैं, शक्ति देते हैं, प्यार देते हैं, और मुख के द्वारा ईश्वरी ज्ञान देते हैं, ताकि बच्चों को हर तरह से ईश्वरी ज्ञान धन से भी भरपूर करें, पवित्रता के बल से भी भरपूर करें, दिव्यता से भी भरपूर करें, दैवी गुण संपन्न भी बनाएं। क्यों? पिता इतना ऊंचा और बच्चे क्या कहते हैं, भक्ति में क्या कहते थे, हम आपके चरणों की धूल हैं। तो बाबा कहते थे बच्चे धूल चरणों की धूल बने नहीं, शोभता ही नहीं। योग्य बाप की आप योग्य संतान हो, इस नशे में आओ बस। जब ऐसा नशा आपको रहे कि हम किसकी संतान है, खानदानी नशा आपको ऊंचा बनाएगा। जैसे कोई कहता है मैं इस खानदान का हूं, उस खानदान का हूं, इसका हूं, बाबा कहता है आप ईश्वरी खानदान के हो। ईश्वरी खानदान सबसे बड़ा खानदान है। सारा विश्व, सारे विश्व की आत्माएं तो सब बाबा के बच्चे हैं ना, लेकिन वो पहचानते नहीं, उनको वो ज्ञान का नेत्र अभी तक नहीं खुला है। तो जिनका ज्ञान नेत्र खुला है, बाबा कहता था इस नजर से एक दो को देखो, इतनी ऊंची नजर से एक दो को देखेंगे पराया कोई नहीं लगेगा, सब अपने भाई बहने लगते हैं। न सिर्फ लगते हैं, हैं। और आज मधुबन में आप सब आकर के, भले कितना भी बड़ा परिवार है, सब एक साथ बैठ करके बाबा के महावाक्य सुनते हैं, एक साथ बैठ करके बाबा की याद में बैठते हैं, एक साथ बैठ करके ब्रह्मा भोजन करते हैं, एक साथ बैठ करके दादियों के साथ रू रूहान करते हैं, और क्या चाहिए। कहाँ आए हैं आप, कभी सोचा है कहाँ आए हैं, कहाँ आए हैं भाई जी, बोलो। अपने प्यारे मधुबन में आए हैं। वहां ऊपर में बाबा ने एक बोर्ड लिखवाया था इंग्लिश में, वेलकम टू बाप दादाज होम योर होम। किसी भी मंदिर या किसी भी संस्था में ऐसे शब्द देखे लिखे हुए, वेलकम टू बाप दादाज होम योर होम? ये केवल ईश्वरी परिवार के लिए, बाबा के बच्चों के लिए ये महावाक्य बाबा ने लिखवाए कि ये सब बच्चे हैं, अपने घर आते हैं। और अव्यक्त बाबा ने उसको और क्लियर किया कि ये आपका घर है, बाप दादा का घर सो बच्चों का घर है, आप अपने घर में आकर के आराम करते हैं, और वो आपका लौकिक घर जो है या लौकिक बिजनेस स्थान है, वो आपका सेवा का स्थान है। वहां जाकर के लौकिक और अलौकिक सेवा करने के लिए जाते हैं, फिर रिफ्रेश होने के लिए अपने घर में आते हैं। चाहे भारत के भाई बहने हैं किसी भी कोने से, चाहे नेपाल के भाई बहने हैं, चाहे विदेश के किसी और देशों के भाई बहने हैं, जो एक बार अपने इस ईश्वरी घर में आए हैं, उनकी क्या दिल होती है, जितना जल्दी हो सके फिर से वापस अपने घर जाए। ऐसे ही नहीं इंग्लिश में बोलते हैं, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, सुना है ना। तो जो आप सब भाई बहने पहली बार भी मधुबन में आए हो, आपको लगता है कि आप अपने घर में आए हैं, जरा हाथ खड़ा करो जो ऐसा फील करते हैं। दूसरे भी बाकी भी बताएं, भाई आप भी तो अपने घर में आए हो ना, जरा हाथ आप भी खड़ा करके दिखा दो। क्योंकि कर्नाटक जोन के भाई बहने जिनकी इस बार सेवा की ड्यूटी है, कब से आ रहे हो लक्ष्मी बहन, किस वर्ष से आते हो? बाबा अव्यक्त हुए उससे पहले से आते हैं। मेरे को याद है 1963 से आने शुरू हो गए थे। उस समय की बातें तो और भी मजे की थी। आजकल तो ट्रांसलेशन फट से मिल जाता है, उस समय ट्रांसलेशन नहीं होता था। बाबा के सामने भाई बहने बैठते थे, खासकर माताएं जो बैठी होती थी, भाषा नहीं समझती थी, लेकिन बाबा की मुरली सुनते हुए इतनी मस्त होती थी। तो बाबा हंसते हंसते कहते थे, बच्चियां भले भाषा नहीं समझती हैं, पर बाबा के भाव बहुत प्यार से समझती है। तो ये इतनी एक मीठी मीठी बातें जब मैं याद करता हूं तो हृदय गदगद हो जाता है, इतना अंदर सुख मिलता है कि इतना बड़ा परिवार हमारा, इतने अच्छे अच्छे भाई बहने जिनको दूसरी कोई मन में लगन नहीं है, बाबा की सर्विस। हाँ, ब्रह्मा कुमारी बहनों किस लिए समर्पित हुए हैं? पैसे के लिए नहीं, पे के लिए नहीं, ना, क्योंकि उनको पता है अगर पे की बात करेंगे तो राजा ही गई, फिर सत्यु की राजा ही गई, फिर नहीं राजा बन सकते। आज भी कोई कह रहे थे नौकरी करती हैं, ये करती हैं। मैंने कहा बाबा साकार बाबा क्या कहता था कि बच्चियों को नौकरी टोकरी नहीं उठानी चाहिए कभी, लेकिन आजकल भाई रिवाज है इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट रहो लेकिन ईश्वरी सेवा के लिए साथ साथ उसका भी प्रबंध करो, डबल सर्विस करके दिखाओ, तो डबल ताजधारी बन जाएंगे। बाबा का तो इस तरह का इशारा। बाबा की खास एक बात जो साकार बाबा को देखते थे कि धीरे धीरे बाबा ने तपस्या पर बहुत ध्यान खिंचवाया। एक अपनी उन्नति के लिए चार्ट लिखने पर, और दूसरा खास ध्यान खिंचवाया कि बच्चे धीरे धीरे अभ्यास करो, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा, ऐसे करते करते जब 8 घंटा योग करेंगे, योग बाबा का कहने का भाव कि सिवाय बाबा के और कोई मन में ना आए, जब 8 घंटा करेंगे तो कौन सी स्थिति बन जाएगी? कर्मातीत स्थिति बन। कर्मातीत स्थिति तक पहुंचने के लिए 24 घंटे में से 8 घंटे तपस्वी बनना जरूरी है। अगर तपस्वी नहीं बन सकेंगे तो कुछ कमी रह जाएगी। पास्ट की ना भी कोई बात रहे, लेकिन जो भविष्य के लिए लाइट का जो ताज मिलना है, अर्थात इतना पावनता की ऊंचाई में चले जाएं, उसमें कुछ कमी रह जाएगी। तो इस बात पर भी थोड़ा अपना अटेंशन जाना चाहिए। और समय की पहचान सुनते तो रहते हैं, बीच बीच में आवाज उठती है, कैलेंडर कभी बदलते हैं तो उठती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं तो कहते हैं अभी घोर कल युग है, अब इसके बाद जरूर ये खत्म हो जाए। लेकिन समय का परिवर्तन लाने वाले कौन है? कौन लाने वाले? अभी सोचना। शांति। भाई सभी आराम से बैठे हो, हाँ? कोई तकलीफ तो नहीं? सभी खुश हो, मौज में? सदा सदा मौज में? वाह, फिर तो स्वर्ग आया के आया। अच्छा, मधुबन देखा? सभी ने मधुबन देखा? शांतिवन सबने देखा? हाँ, भोजन करते हो जहां वहां किचन भी देखा? इतना बड़ा किचन है किसी का? जितना बड़ा किचन आपका है इतना बड़ा किचन किसी का नहीं है दुनिया के अंदर। ये भी आपको मुबारक हो। तो बाबा कहते थे, बाबा जो कुछ बाबा का बनता है बच्चों के लिए है। बच्चे अपना क्या कहते हैं, अपना सौभाग्य साथ ले आते हैं। कोई भी बच्चा बाबा का मधुबन में आता है तो बाबा उसको देख के कहते थे, ये बच्चा बहुत बहुत सौभाग्यशाली है, अपना 21 जन्म तो क्या 84 जन्म का भाग्य साथ लेके आया। तो सदा अपने आप को इसी खुशी में रखना कि हमारे जैसा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है, और हम बाकी भी जिसके संपर्क में आए उनको भी आप समान बनाएं, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य पूरा हो जाए। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी 2 मिनट या 3 मिनट थोड़ा निरसंकल्प हो के बाबा की याद में बैठ। थोड़ा सा सीधा बैठें, मैं भी सीधा बैठूंगा। अच्छी तरह क्या याद करेंगे, आज किससे मिलने आए हैं? बाबा से मिलने। तो जब देखिए किसी बड़े व्यक्ति से मिलना होता है ना, तो टाइम निश्चित हो जाए तो सारा दिन उसकी खुशी रहती है। तो सुबह से लेके अवश्य ही आप भी मन ही मन में खूब खुशी में होंगे कि शाम को हम बाबा से मिलेंगे। और केवल 1 सेकेंड या 1 मिनट बाबा दर्शन नहीं देंगे, बाबा अच्छी तरह से हम बच्चों से मिलेंगे भी, आत्मों को दृष्टि दे करके भरपूर भी करेंगे, और साथ साथ महावाक्यों के द्वारा अपने पन की महसूसता देंगे, और हमारे भाग्य की महिमा कितनी करते हैं बाबा, हर मुरली में भाग्य की महिमा करते हैं, और साथ साथ फिर ईश्वरी परिवार के नाते हम सबके साथ में भोग भी स्वीकार करेंगे। तो ये कितनी सौभाग्य की बात है, इस खुशी में आज सारा दिन इसी नशे में रहना है कि हम बाबा के साथ मिलन मनाने जो आए हैं, वो महान दिन आज आया है। ऐसे दिन की प्रतीक्षा सभी करते हैं। तो अपने आप को सदा खुश रखना, आज का दिन ही सिर्फ नहीं लेकिन अभी सदा के लिए, ये जीवन ही सदा खुशनुमा रहे। बस बाबा क्या कहते थे, हंसते हंसते कहते थे, शरीर से आत्मा भी निकल जाए तो भी चेहरे की मुस्कान ना जाए। तो ऐसे मुस्कुराते हुए बाबा की याद में हम सब बैठें, और लाइट हो करके थोड़ा लाइट की दुनिया की सैर करके आए।